को यहाँ तक आऊँ।
यीशु ने उससे कहा,
जा अपने शौहर को यहाँ बुला ला।
औरत ने जवाब में उससे कहा,
मैं बेशौहर हूँ।
यीशु ने उससे कहा,
तूने खूब कहा कि मैं बेशौहर हूँ, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो तेरा शौहर नहीं। ये तूने सच कहा।
औरत ने उससे कहा,
ऐ खुदावन, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर परिष्टिश की और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ परिष्टिश करनी चाहिए यरूशलेम में है।
यीशु ने उससे कहा,
ऐ औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम न इस पहाड़ पर बाप की परिष्टिश करोगे और न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी परिष्टिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी परिष्टिश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें।
औरत ने उससे कहा,
मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा।
यीशु ने उससे कहा,
मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ।
इतने में उसके शागिर्द आ गए और ताज्जुब करने लगे कि वे औरत से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने ना कहा कि तू क्या चाहता है या उससे किस लिए बातें करता है। बस औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी,
आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुमकिन है कि मसीह यही है?
वो शहर से निकलकर उसके पास आने लगे। इतने में उसके शागिर्द उससे ये दरख्वास्त करने लगे,
ऐ रब्बी, कुछ खा ले।
लेकिन उसने उनसे कहा,
मेरे पास खाने के लिए ऐसा खाना है जिसे तुम नहीं जानते।
बस शागिर्दों ने आपस में कहा,
क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है?
यीशु ने उनसे कहा,
मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम कहते नहीं कि फसल आने में अभी 4 महीने बाकी हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर नजर करो कि फसल पक गई है और काटने वाला मजदूरी पाता और हमेशा की जिंदगी के लिए फल जमा करता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर खुशी करें। क्योंकि उस पर यह मसल ठीक आती है कि बोने वाला और है, काटने वाला और। मैंने तुम्हें वो खेत काटने के लिए भेजा जिस पर तुमने मेहनत न की, और उन्होंने मेहनत की और तुम उनकी मेहनत के फल में शरीक हुए।
और उस शहर के बहुत से सामरी उस औरत के कहने से जिसने गवाही दी कि उसने मेरे सब काम मुझे बता दिए, उस पर ईमान लाए। बस जब वो सामरी उसके पास आए तो उससे दरख्वास्त करने लगे कि हमारे पास रह। चुनाचे वो 2 रोज वहां रहा और उसके कलाम के सबब से और भी बहुतेरे ईमान लाए। और उस औरत से कहा,
अब हम तेरे कहने ही से ईमान नहीं लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया और जानते हैं कि फिल हकीकत ये दुनिया का मुनज्जी है।
फिर उन 2 दिनों के बाद वो वहां से रवाना होकर गलील को गया, क्योंकि यीशु ने खुद गवाही दी,
नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता।
बस जब वो गलील में आया तो गलीलियों ने उसे कबूल किया, इसलिए कि जितने काम उसने यरूशलेम में ईद के वक्त किए थे उन्होंने उनको देखा था, क्योंकि वो भी ईद में गए थे। बस वो फिर कानाए गलील में आया जहां उसने पानी को मैं बनाया था, और बादशाह का एक मुलाजिम था जिसका बेटा कफरनहूम में बीमार था। वो ये सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है उसके पास गया और उससे दरख्वास्त करने लगा कि चलकर मेरे बेटे को शिफा बख्श, क्योंकि वो मरने को था। यीशु ने उससे कहा,
जब तक तुम निशान और अजीब काम न देखो हरगिज ईमान न लाओगे।
बादशाह के मुलाजिम ने उससे कहा,
आए खुदावन,
मेरे बच्चे के मरने से पहले चल।
यीशु ने उससे कहा,
जा, तेरा बेटा जीता है।
उस शख्स ने उस बात का यकीन किया जो यीशु ने उससे कही और चला गया। वो रास्ते ही में था कि उसके नौकर उसे मिले और कहने लगे,
तेरा लड़का जीता है।
उसने उनसे पूछा,
उसे किस वक्त से आराम होने लगा था?
उन्होंने कहा,